ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सोना तस्करी मामले की छानबीन के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय जांच आयोग हुआ गठित। राष्ट्र संघीय महासभा में नेपाल की सहभागिता और चीन भ्रमण को उपलब्धि मूलक बताते हुए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में साझा किए अनुभव। प्रधानमंत्री प्रचंड के निर्देश के बाद पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लिया गया वापस। और स्पेन के एक नाइट क्लब में हुई आगलगी में कम से कम 13 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि सोने की तस्करी और अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए सुझाव सहित प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जांच आयोग गठित किया गया है। आज प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि पर्व त्योहार नजदीक आ चुके समय में पेट्रोलियम में हुई मूल्य वृद्धि उपयुक्त नहीं था, इसलिए इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने मूल्य वृद्धि को वापस लेने का निर्देश किया और निगम ने इसे वापस भी लिया। अपने संबोधन में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा में नेपाल की ओर से हुई सहभागिता और चीन दौरे को उपलब्धि मूलक बताते हुए कहा कि इन दौरों से जहां एक विश्वास का वातावरण बना, वहीं नेपाल विश्व मंच पर पहचाने जाने के हिसाब से स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय ने विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 को प्रतिनिधि सभा में पेश किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री राय ने कहा कि विद्यालय शिक्षा सुधार और विद्यालय शिक्षा में देश में एकरूपता लाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक परसों मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के साथ सोना तस्करी प्रकरण में उच्च स्तरीय छानबीन आयोग का गठन प्रतिनिधि सभा बैठक लगाए विषय में विचार विमर्श किया। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए विचार विमर्श में संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों में से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अलावा बाकी सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सोना तस्करी प्रकरण के संबंध में एमआरए लगाए दल उच्च स्तरीय छानबीन आयोग की मांग करती आ रही है और बीते भाद्र 6 गते को सरकार और राजनीतिक दलों के बीच आश्विन 5 गते तक उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठित करने और गठन के दिन से ही आयोग के काम शुरू करने की सहमति हुई थी। इससे पूर्व आज सुबह प्रधानमंत्री प्रचंड और एमआरए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बीच राय मशवरा हुआ था और प्रधानमंत्री ने वहां हुई बातचीत के संबंध में सत्तारूढ़ दलों के साथ भी विचार विमर्श किया था। सरकार ने सोना तस्करी मामले की जांच के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश आचार्य के समन्वय में एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसमें अर्थविज्ञ किशोर जंकार की गृह मंत्रालय के प्रेम राज जोशी और पूर्व एआईजी सहकुल थापा सदस्य के रूप में शामिल है। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने दी। आयोग सोने की अवैध तस्करी और आयात का अध्ययन कर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने कल रात से लागू हुई पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ोतरी आज दोपहर 12 बजे से लागू होने के हिसाब से वापस लेने की जानकारी साझा की है। ऑयल कॉरपोरेशन की आज ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बढ़ी हुई कीमत वापस कर दी गई है और पुरानी कीमत यथावत है। वर्तमान मूल्य वृद्धि की भरपाई मूल्य स्थिरीकरण कोष और नेपाल सरकार से प्राप्त राशि से की जाएगी, ये बात विज्ञप्ति में उल्लिखित है। नेकपा माओवादी केंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की यात्रा ने नेपाल चीन संबंधों में एक नया आयाम जोड़ा है। आज केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाडा में आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में माओवादी केंद्र के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच की शंकाओं का समाधान हो गया है और आर्थिक सहायता नई तकनीकी की हस्तांतरण को लेकर दीर्घकालीन महत्व के समझौते हुए हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि यातायात दुर्घटनाओं से उत्पन्न भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए सभी सरोकार वालों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज वैली ट्रैफिक पुलिस कार्यालय और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता सप्ताह 2080 का उद्घाटन करते हुए उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा न केवल यातायात पुलिस की जिम्मेदारी है बल्कि ड्राइवरों की भी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनवादी गणतंत्र चीन के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ को, मंगोलिया और डेनमार्क के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत प्राध्यापक डॉ रामस्वार्थ राय को, फिनलैंड के लिए भी गैर आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष के तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ प्रदीप ढकाल और तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हाल के सदस्य सचिव डॉ मिलन कुमार थापा समेत तीन लोगों के विरुद्ध विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। सार्वजनिक संपत्ति अपचलन कर भ्रष्टाचार करने के अभियोग में आज विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता भोला दहाल ने दी। सभी पीढ़ियों के लिए ज्येष्ठ नागरिक के मानवाधिकार संबंध में विश्वव्यापी तौर पर घोषित वादों को पूरा करें के नारे के साथ आज 33वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम को महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सुरेन्द्र आचार्य ने संबोधित किया। इस दौरान मंत्री आचार्य ने कहा कि ज्येष्ठ नागरिकों में मौजूद ज्ञान, इल्म और अनुभव को विकसित प्रविधि और विकास के आयामों के साथ जोड़ा जाए तो देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण पूर्व स्पेन के मर्शिया में एक नाइट क्लब में आग लगने से हुए भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग लापता है। इस हादसे के बाद शहर के मेयर जोस बेलस्टा ने कहा है कि आग लगने के बाद बचावकर्मी अज्ञात लोगों की तलाश कर रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सन पर बताया कि शहर के बाहरी इलाके अटलायास में ट्रीटे नाइट क्लब में रविवार तड़के आग लग गई। वहीं मेयर बेलस्टे ने इस हादसे में मरने वालों के लिए 3 दिन के शोक की घोषणा की जिसके बाद मर्सिया के सिटी हॉल के बाहर झंडे को आधा झुका दिया गया है। बेलस्टा ने एक टीवी चैनल पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बचावकर्मी अभी भी लापता हुए कई लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आग सुबह 6 बजे लगी और अब इस पर काबू पा लिया गया है। बेलस्टा के मुताबिक आपातकालीन सेवाएं आग के कारण का पता लगाने के लिए काम कर रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोना तस्करी मामले की छानबीन के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय जांच आयोग हुआ गठित। राष्ट्रसंघीय महासभा में नेपाल की सहभागिता और चीन भ्रमण को उपलब्धि मूलक बताते हुए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में साझा किए अनुभव। प्रधानमंत्री प्रचंड के निर्देश के बाद पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लिया गया वापस और स्पेन के एक नाइट क्लब में हुई आगलगी में कम से कम 13 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।